आशिका अभिमान के साथ हॉस्पिटल से वापस लौट रही थी कि तभी अचानक उनके सामने हॉस्पिटल की लॉबी में तृप्ति आ गई थी। तृप्ति यही चाहती थी कि आशिका उसके साथ चले। उसने अभिमान और आशिका को रोकना चाहा, लेकिन अभिमान की सिक्योरिटी ने तृप्ति को गन पॉइंट पर ले लिया था। उनके आगे तृप्ति का कोई बस नहीं चल रहा था, आकाश भी उसके आसपास नहीं था। आशिका और अभिमान को रोकने के लिए तृप्ति ने आशिका की शादी के बारे में अभिमान के सामने खुलासा कर दिया था। जैसे ही अभिमान ने ये सुना कि आशिका पहले से शादीशुदा है, तो वो एक पल के लिए वहीं रुक गया था। ये उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। अभिमान ने हैरानी से आशिका की तरफ देखा तो उसकी नज़रें नीची हो गई थीं। वहीं उन दोनों के बीच आई इस अचानक दूरी को तृप्ति ने भांप लिया था। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। इस सन्नाटे के बीच तृप्ति ने आगे कहा, सिर्फ शादीशुदा ही नहीं, इसका अपने पहले पति से तलाक भी नहीं हुआ है। इसने तुम्हें बताया नहीं क्या? लगता है इसने अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। इसका बाप? इससे पहले कि तृप्ति की बात पूरी होती, आशिका उसकी तरफ पलटी और गुस्से में चिल्लाकर जोर से बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती हैं? आप ही ने कहा था कि हमारे बीच के सारे रिश्ते टूट चुके हैं, फिर क्यों मेरी लाइफ बर्बाद करने पर तुली हो? मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रही, बेटी हो तुम मेरी। नया रिश्ता सच्चाई की बुनियाद पर खड़ा किया है। तुम इस लड़के के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हो, तो कम से कम इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता तो होना चाहिए, तृप्ति ने कंधे उचकाकर बेपरवाही से कहा। मैं किसी के साथ कोई नई ज़िंदगी नहीं शुरू कर रही हूँ, और आपको लगता है कि आपके होते मैं कभी खुश रह सकती हूँ? आशिका ने धीमी पैद भरी आवाज़ में कहा। उसके बाद आशिका ने एक नज़र अभिमान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में हज़ारों सवाल थे। आशिका को किसी के सवाल के जवाब नहीं देने थे। वो अभिमान को वहीं पर छोड़कर आगे जाने लगी। तभी अभिमान जल्दी से उसके पीछे आया और आशिका का हाथ पकड़ लिया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभिमान बिल्कुल शांति से आशिका का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर लेकर जा रहा था। तृप्ति ये देखकर पैर पटकती रह गई। वो मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, इसकी माँ ने मेरी खुशियाँ बर्बाद की और ये अब मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। अभिमान राजवंश विहा का पति है, ऐसे कैसे वो इस लड़की के साथ रह सकता है? मैं इसे मेरी बेटी की खुशियाँ बर्बाद नहीं करने दूंगी। तृप्ति जल्दी से उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन राघव उसके सामने आ गया था। राघव ने तृप्ति की आंखों में देखकर घूरते हुए कहा, उनके पीछे जाने के बारे में सोचना भी मत। हॉस्पिटल है इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड शांत है, वरना अब तक तुम इसी हॉस्पिटल में एडमिट मिलती। तृप्ति की बातों से राघव समझ गया था कि उसके इरादे आशिका को लेकर अच्छे नहीं थे, और शायद तभी अभिमान आशिका को उससे प्रोटेक्ट कर रहा था। उसके होते हुए वो अभिमान और आशिका के पीछे बिल्कुल नहीं जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान और आशिका गाड़ी के अंदर थे। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी दोनों को ही अंदर ही अंदर एक घुटन सी दे रही थी। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद अभिमान ने धीमी आवाज़ में कहा, तो हमारा रिश्ता अभी भी वन साइडेड है। तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। जो भी सामने आया था वो एक्सीडेंटली आया था, तो मजबूरी में तुम्हें थोड़ा बहुत बताना पड़ा। अब मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, बोलते हुए अभिमान की आवाज़ में दर्द छुपा था। आशिका बिल्कुल चुप थी। आखिर वो अपनी अजीब सी शादी के बारे में क्या बताती? वो खुद अपने पति के बारे में नहीं जानती थी। ऊपर से उसका नाम अभिमान के नाम से मिलता था। कोई सुनता तो यकीन करना तक मुश्किल था। तुम मुझे पहले ही बता सकती थी कि तुम यहाँ से अपने हस्बैंड के पास जाने वाली हो। वो मुझसे बेहतर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। चाहो तो अभी जा सकती हो, अभिमान ने भारी आवाज़ में कहा। उसका दिल जानता था कि ये शब्द बोलते हुए उसे अंदर से कितनी तकलीफ हो रही थी। आशिका की शादी के बारे में जानना भी उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। ऊपर से उसने उसे कुछ नहीं बताया था। आशिका ने खुद को मजबूत किया और सख्त आवाज़ में कहा, तुम्हारी शादी होने तक रुक जाती हूँ, बस इतना ही काम बचा है। मुझे काम अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है। अभिमान ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया था। वो आशिका की तरफ देर तक नहीं देख रहा था। आशिका ने भी अपनी आंखें बंद की और सीट पर लीन हो गई थी। वो मन ही मन बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन तृप्ति हिल, तुम जो चाहती थी वो तुमने कर दिया। पहली बार किसी अजनबी से बिना किसी मतलब के एक जेन्युइन रिश्ता बना था, और उसमें भी तुमने गलतफहमी पैदा कर दी। मुझे एक ना एक दिन इसकी लाइफ से दूर जाना ही था, फिर आज मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? आशिका ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया था ताकि उसके मुंह से सिसकी ना निकल जाए, लेकिन उसके इतना कंट्रोल करने के बाद भी उसकी बंद आंखों से आंसू का कतरा बह ही गया था। वहीं अभिमान के मन में भी काफ़ी कुछ चल रहा था। प्यार करने लगा था मैं तुमसे, और तुमने तो ठीक से मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था कि तुम्हारा सच सुनने के बाद भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जो तुमने मुझसे झूठ बोला? सोचते हुए अचानक अभिमान को उस दिन की याद आई जब आकाश और आशिका की न्यूज़ देने के लिए उसके आदमी ने कॉल किया था। उसने यही कहा था कि सब कुछ तैयारी के बाद भी शादी नहीं हो पाई।
अभिमान ने अपने मन में कहा, तो वो तुम्हें तुम्हारे पति से डिवोर्स लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं। आशिका की शादी के चलते ही आकाश राजवंश उससे शादी नहीं कर पाया, वरना वो जिस तरह आशिका के पीछे पड़ा है अब तक उसे फोर्सफुली अपना बना चुका होता। अभिमान ने आशिका की तरफ देखा, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे, उसकी आंखें बंद थी। इससे पहले अभिमान आशिका को कुछ बोल पाता, रचित ने गाड़ी रोकी। गाड़ी रुकते ही आशिका ने आंखें खोलकर देखा तो वे अभिमान के ऑफिस के आगे खड़े हुए थे। जिस तरह से अभिमान आशिका से नाराज हुआ था, उसके बाद आशिका को उसके साथ रुकना ठीक नहीं लगा। आशिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बस अपना सामान ले लूं, उसके बाद यहां से चली जाऊंगी। पागल मत बनो, अभिमान गुस्से में चिढ़कर बोला, वो लोग अभी भी तुम्हारे पीछे हैं और ये इकलौती ऐसी जगह है जहां वे पहुंच नहीं सकते। तुम्हारी इकलौती ऐसी जगह के बारे में तुम्हारे डैड को पता चल चुका है। डोंट वरी, अब तक मैंने खुद को उनसे बचा कर रखा है, तो आगे भी रख सकती हूँ। तुम हमेशा से मेरे साथ नहीं थे और ना ही रहने वाले हो, आशिका ने सख्त लहजे में कहा। वो जानती थी कि उसकी बातें अभिमान को चुभ रही हैं, लेकिन अब वो उसका सामना भी नहीं कर सकती थी। आशिका गाड़ी से बाहर निकली और ऊपर जाने लगी। वहीं उसके जाते ही रचित बोला, सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ठीक से कुछ बताती तक नहीं है। मेरा बाप इससे शादी करना चाहता है और द ग्रेट न्यूज इज दैट मुझे आज पता चला है कि ये पहले से शादीशुदा है, अभिमान झुंझुना कर बोला। हाँ, तेरा तो दिल टूट गया होगा ना, रचित हंसकर बोला। उसकी बात सुनकर अभिमान खा जाने वाली निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। रचित ने सिर हिलाया और कहा, ऐसे मत देख, कोई बेवकूफ भी बता सकता है कि तुम उससे प्यार करने लगे हो। बदकिस्मती से तुम्हारी किस्मत में आशिका सिंघानिया है और ऐश शायद अपने पति के साथ खुश है। रचित की बातों ने अभिमान को अच्छा खासा गुस्सा दिला दिया था। वो गाड़ी से बाहर निकला और आशिका के पीछे जा रहा था। अब तो उसे आशिका को रोकने का भी मन नहीं कर रहा था।
कुछ ही देर में आशिका ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। जाने से पहले उसने अभिमान की तरफ देखकर कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तुम अपनी शादी से भले ही खुश ना हो, लेकिन शादी के अगले दिन तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों की बर्बादी की खबर मिल जाएगी। शायद तब तुम्हें थोड़ी खुशी मिले। इसे मेरी तरफ से अपनी शादी का गिफ्ट समझ लेना। मुझे इस तरह के गिफ्ट लेने का कोई शौक नहीं है। अपना एड्रेस या अकाउंट नंबर दे देना, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, अभिमान ने बेरुखी से जवाब दिया। आशिका आगे कुछ नहीं बोली। वो अपना लगेज लेकर वहां से निकल रही थी। आगे जाने पर आशिका को रचित मिला। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, रचित ने ऑफर रखा। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगी, आशिका ने बिना किसी भाव के कहा और अपना सामान लेकर वहां से जाने लगी। जाते वक्त आशिका की आंखें नम थीं। रेहान के अलावा अगर किसी अनजान इंसान के साथ पहली बार उसका रिश्ता इतने कम समय में बना था तो वो अभिमान था, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। अभिमान से दूर जाते हुए आशिका को दिल ही दिल में काफी दर्द महसूस हो रहा था, पर उसने मुड़कर नहीं देखा। वो जानती थी कि अगर उसने मुड़कर देखा तो शायद अभिमान के दिल को एक नई उम्मीद मिल जाएगी। वहीं अभिमान की आंखों में भी आंसू थे। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। ऐश के उसकी जिंदगी में आने पर पहली बार उसे अपनी जिंदगी खुशनुमा लग रही थी, पर एक बार फिर वो अकेला खड़ा था अपने इस सच के साथ कि उसे आशिका के बिना अपनी लाइफ बितानी पड़ेगी। आशिका एआर अंपायर से बाहर निकली तो वो काफी केयरफुल थी। उसने खुद को अच्छे से हाइड कर रखा था। थोड़ा आगे जाने पर आशिका को टैक्सी मिल गई थी और वो टैक्सी के अंदर थी। गाड़ी में बैठते ही उसने सबसे पहले अभिमन्यु को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही आशिका ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए मिस्टर राजवंश, मैं डॉक्टर मर्चेंट को कॉल कर लेती लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं है। तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम इशिका के लिए बहुत मायने रखती हो। इशिका से जुड़ी हर चीज मेरे लिए कीमती है, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कुछ और। तुम बिना किसी झिझक के मुझे कभी भी कॉल करके हेल्प मांग सकती हो, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आशिका के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसके लिए इशिका और अभिमन्यु का रिश्ता बहुत आइडियल था। बहुत कम खुशनसीब लोग होते थे जिन्हें जिंदगी में इस तरह का प्यार मिलता था। मुझे रहने के लिए सिर्फ एक जगह चाहिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस 2-3 दिनों के लिए, कहीं भी चलेगी, आशिका ने जवाब दिया। ठीक है, फिर ऐसा करो, गोवा आ जाओ। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी तुम्हारी थोड़ी जरूरत है। मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, अगले आधे घंटे में तुम्हें लेने के लिए मैं अपने आदमी भेज दूंगा, अभिमन्यु बोला। मुंबई से थोड़ा दूर गोवा जाना आशिका के लिए भी सेफ था। उसने अभिमन्यु की बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया था। आशिका ने अभिमन्यु को एक सुरक्षित लोकेशन बता दी थी और गाड़ी से उतरकर कुछ दूर पैदल चलकर वो वहां पहुंची थी। आशिका के जाने के लगभग 5 मिनट बाद एक गाड़ी आई। ड्राइवर पहले से ही अभिमन्यु के साथ कॉल पर था। आशिका की सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी भी था। अभिमन्यु से बात करने के बाद आशिका गाड़ी में बैठ गई थी। वहीं दूसरी तरफ इशिका बाथरूम से बाहर निकली। उसे उठने में देर हो गई थी। अभिमन्यु भी उसके जागने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे नक्श के बारे में बता सके।
इशिका जब बाहर आई तब अभिमन्यु आशिका से बात कर रहा था। वो बोला, ठीक है ऐश, अब गोवा में मिलते हैं और तुम्हें खुद की सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर रहने वाली हो। इतना कहकर अभिमन्यु ने कॉल कट कर दिया। इशिका ने उसकी कुछ बातें सुन ली थी। उसने आंखें छोटी करके अभिमन्यु की तरफ देखा। क्या तुमने अभी अभी आश का नाम लिया? तुम जानते हो उसे अभिमन्यु? क्या वो यहाँ आ रही है? इशिका की आवाज में एक्साइटमेंट था। तुम्हें वो याद है? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल याद है, उसे मैं पिछले कई सालों से जानती हूँ, तो कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाया। काफी टाइम बाद उससे मिलना होगा। कब आ रही है वो? इशिका बोली। अभी कुछ देर में पहुंचती ही होगी, लेकिन तुम उससे अभी नहीं मिल पाओगी। आशिका से मिलने से पहले तुम्हें कुछ जरूरी काम करना है, अभिमन्यु बोला। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। अब वक्त आ गया था कि अभिमन्यु नक्श को उसके अंजाम तक पहुंचा दे। उसने नकुल और प्रशांत की तरह उसे भी पूरी तरह से अपनी जिंदगी से हटा दिया था। अब नक्श की बारी थी। ऊपर से उसने आशिका को भी इसी मकसद से बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ नक्श अभिमन्यु के प्लान से अनजान होटल में था और इशिका से मिलने जाने के बारे में सोच रहा था।